بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسا ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتیانت دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ फिर यदि तुम इन सब स्पष्ट निशानियों और चमत्कारों के आने के बाद भी फिसल कर पद भ्रष्ट हो गए तो जान लो कि ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ये पद भ्रष्ट इतने सारे स्पष्ट तर्कों के बावजूद इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर और फरिश्ते बादलों की छाया में प्रकट होकर इनके सामने आएं और इनके समक्ष नए तर्क रखें ताकि ये ईमान लाएं, जबकि लोगों के मार्गदर्शन के बारे में ईश्वरीय आदेश पूरा हो चुका है और सभी मामले ईश्वर ही की ओर लौटाए जाएंगे।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओं, आज बुधवार है, आबान के 11, नवंबर की 2 और अरबी उसानी की 7 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि 13 आबान तुष्टता और अमेरिका के परास्त होने का उदाहरण है। राष्ट्रसंघ ने फिलिस्तीनी अधिग्रहण के समाप्त किए जाने की मांग की है। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। दुनिया भर के बहुत से देशों में इसराइल से नफरत में वृद्धि होती जा रही है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि 13 आबाद दुष्टता और अमेरिका के परास्त होने का उदाहरण है। आज ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने छात्रों से मुलाकात में बल देकर कहा कि 13 आबान का दिन अर्थात 4 नवंबर अमेरिकी दुष्टता और उसके परास्त होने का उदाहरण है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने बल देकर कहा कि 13 आबान एक ऐतिहासिक दिन है, एक इतिहास भी है, अपने अंदर अनुभव लिए हुए और अनुभवों की सीख देने वाला भी है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि 13 आबान एक इतिहास है, यानी इस दिन ऐसी घटना हुई जो इतिहास में बाकी रहेगी। इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता, इसे भुलाया भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 13 आबान अनुभव की सीख देने वाला भी है, क्योंकि इसी घटना के कारण एक प्रतिक्रिया अस्तित्व में आई जो हमारे लिए, देश के भविष्य के लिए, खुद आपके भविष्य के लिए और खुद आपके राष्ट्र के लिए पाठ है। इसी प्रकार इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका एक ऐसी शक्ति है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, हम 13 आबान को पेश आने वाली घटना को देखते हैं तो ज्ञात हो जाता है कि नहीं, उसे पूरी तरह प्रभावित किया जा सकता है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने बल देकर कहा कि हर या कुछ सप्ताहों के दौरान ہائبرڈ وارفیئر میں امریکہ زیر شاثر یورپ کے کچھ شکتیاں اور کچھ گٹوں نے ایرانی راشٹر کو نقصان و آگاہت پہنچانے کے لیے سمست سمبھاوناؤں کا پریوگ کیا، پرنتو ایرانی راشٹر نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہتوپورن دن کو امریکی کرودھت ہوتے ہیں کیونکہ جہاں یہ دن دشتا کا ادھارن ہے، وہی اس بات کو بھی سدھ کرنے کا دن ہے کہ امریکہ کو پراست کیا جا سکتا ہے۔ اسی پرکار سروچ نیتا نے ایرانی راشٹر کے سمرتھن پر آدھارت امریکی ادھیکاریوں کے آج کل کے بیانوں کو پاکھنڈ پر آدھارت بتایا اور کہا کہ آپ نے پرمانو ویگیانکوں کے ہتھیارے یعنی زیر شاسن کا سمرتھن کیا اور امریکہ اور دوسرے دیشوں میں ایرانی راشٹر کا اربوں ڈالر روک کر اسے اپنی سمپت سے لابھ اٹھانے سے ونچت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ویرودھی ادھکانش گھٹناؤں میں آپ کی بھومکا دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد آپ پوری نرلجتا سے جھوٹ بولتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ایرانی راشٹر کے ہتیشی و شبھ چنتک ہیں۔ یاد رہے کہ 13 آبان برابر 4 نومبر کے دن کو ایران میں انتراشٹریہ سامراج سے مقابلے اور چھاتر دیوس کا نام دیا گیا ہے۔ سنیوکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے ایک بار پھر فلسطین میں شانتی استھاپت کرنے اور جارڈن ندی کے پشمی کنارے پر زیرِ شاسن کے ادھیگرہن کو سماپت کی جانے کی مانگ کی ہے۔ انٹونیو گوٹیرس نے آج الجیریا میں عرب دیشوں کے نیتاؤں کے 31ویں شکھر سمیلن کے ادگھاٹن بھاشن میں کہا، ہم فلسطین سمسیا سے آرمبھ کرتے ہیں۔ اس سمسیا کے بارے میں راشٹر سنگھ کا درشٹکون سپشٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اوید اتکت فلسطین میں شانتی کو آگے بڑھایا جانا چاہیے اور ادھیگرہن سماپت ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سنیوکت دیش دو دیشوں کا گٹھن ہے جو شانتی و سرکشا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور قدس دونوں کی راجدھانی ہوگا۔ الجیریا کے راشٹرپتی عبد المجید تبون نے بھی اس سمیلن کے ادگھاٹن بھاشن میں کہا، دو دیشوں کے درشٹکون کو عملی جامع پہنانے میں سرکشا پریشد کی اکشمتا کو درشٹی میں رکھتے ہوئے میرا ماننا ہے کہ عرب دیشوں کو چاہیے کہ فلسطینیوں کا راجنیتک و نیتک سمرتھن کریں تاکہ وہ پرتیرودھ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں کیول نیائے پورن طریقے سے ہی شانتی استھاپت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتراشٹریہ سمسیاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب بھی ہماری پہلی پراتھمکتا فلسطین ہے۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ قطر اور کویت نے اسرائیل کے وستاروان کی کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہوئے فلسطین کی دھرتی وشیش روپ سے اوید ادھکت فلسطینی علاقوں کی آزادی کی مانگ کی ہے۔ سنیوکت راشٹر سنگھ میں قطر کے استھائی پرتنیدھی اولیا آل ثانی نے کہا کہ اسرائیل کو عرب دیشوں وشیش کر سیریا کے گولان ہائٹس، لبنان اور فلسطین کی دھرتیوں کا ادھیگرہن سماپت کر دینا چاہیے۔ سنیوکت راشٹر سنگھ میں قطر کی مہیلا راجدوت نے سرکشا پریشد کی بیٹھک میں کہا کہ دو آزاد سرکاروں کے گٹھن کا مدعا فلسطین کا بہترین حل ہے۔ انہوں نے بستیوں کے نرمان کو ترنت روکنے، فلسطینی شرارتیوں کی سودیش واپسی، فلسطینی جنتا کے اتہاسک ادھیکاروں کی پورتی اور سوتنتر فلسطینی راج کے گٹھن کی آوشکتا پر بل دیا۔ دوسری اور کویت نے فلسطینی ناگرکوں وشیش کر ویسٹ بینک کے دو شہروں نابلس اور رام اللہ پر اسرائیل کے نرنتر پاشوک حملوں کی نندا کی ہے۔ کویت نے کہا ہے کہ ادھیگرہنکاری اسرائیل کے ادھیکاری ان پریناموں کے ذمہ دار ہیں۔ کویت نے کہا کہ سرکار نے وشو سمدائے سے مانگ کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے سمرتھن کے لیے کاروائی کرے اور ایک نیائے سنگت اور سمگر حل کی پراپتی کے لیے وارتا کا پریاس کرے۔ پچھلے 4 سال سے بھی کم سمے میں یہ اسرائیل میں 5واں عام چناؤ ہے۔ کسی بھی دل کو پورن روپ سے بہمت نہ ملنے کی وجہ سے اسرائیل میں ایک کے بعد ایک 3 سال میں 5ویں بار عام چناؤ ہوئے ہیں۔ اس سال کے آرمبھ میں اپریل کے مہینے میں سانسد ایدت سلمین نے پردھان منتری نفتالی بینت کی دھارمک راشٹروادی یمینا پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کے استعفے کے ساتھ ہی یمینا پارٹی ضروری بہمت سے پچھڑ گئی۔ سلمین کے استعفے نے 8 پارٹیوں کے گٹھ بندھن کو अस्त व्यस्त कर दिया। इसराइल में जो संसदीय प्रणाली है उसमें अलग अलग आकार के कई अलग अलग दल हैं, लेकिन इनमें से किसी भी दल ने नेसेट में कभी भी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं किया, जिससे पार्टियों को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटों तक पहुंचने के लिए गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सार्वजनिक स्वयंसेवियों के रूप में यूक्रेन के युद्ध में 87,000 लोगों को भेजा गया है। फार्स न्यूज के अनुसार पुतिन के जनरल मोबाइलेशन ऑर्डर की परिधि में 87,000 स्वयंसेवियों को यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेज दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को बताया कि 3,00,000 लोगों में से 87,000 स्वयंसेवियों को यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन सैनिकों को अनिवार्य सेवा के रूप में बुलाया गया है वो देश की सेना के विशेष ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके अनुसार इनमें से 87,000 स्वयंसेवियों को अतिरिक्त ट्रेनिंग और आवश्यक कोऑर्डिनेशन के बाद युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेजा गया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास की प्रतिक्रिया में कहा है कि वो परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार की रात को एक बार फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी दी है कि उत्तर कोरिया की सेना अपना स्ट्रेटेजिक मिशन अंजाम दे सकती है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास जारी रहने की स्थिति में दोनों देशों को इतिहास की खतरनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी लेबर पार्टी के महासचिव पाक जोंग चून ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन पर आरोप लगाया कि अमेरिका का असली लक्ष्य उत्तर कोरिया की शासन व्यवस्था को खत्म करना है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों की भी आलोचना की। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि परमाणु हथियारों के प्रयोग से उत्तर कोरिया तबाही के मार्ग पर चला जाएगा। पाक जोंग जून ने कहा कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया भय के बिना उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी सेना के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर कोरिया के विशेष सैनिक अविलंब स्ट्रेटेजिक कार्रवाई अंजाम देंगे। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक एयरबेस पर 6 परमाणु सक्षम B-52 बॉम्बर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी चैनल ABC ने बताया कि वॉशिंगटन ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डार्विन शहर से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में एयरबेस पर विमान के लिए समर्पित सुविधाओं के निर्माण के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने बुधवार को एक दूसरे की समुद्री सीमा में मिसाइलें दागी। प्राप्त समाचारों के अनुसार उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के सोक्यो शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर उल्लू गडो द्वीप पर कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके 3 घंटे बाद दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया की कार्रवाई उसके क्षेत्र का अस्वीकार उल्लंघन है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी किया जिसमें गुजरात के 2 जिलों मेहसाणा और आनंद के कलेक्टरों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी गई है। अपनी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने का हवाला दिया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोतो, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे इस्लामी गणतंत्र ईरान और आर्मेनिया के बीच होने वाली सहमतियों की। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नज़र डालेंगे इसराइल की राजनीतिक अस्थिरता और गहराते संकट पर। भारत में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता संभालने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने राजस्थान का पार्टी संकट है। देखना यह है कि वो इस संकट को कैसे हल करते हैं। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं ईरान आर्मेनिया संबंधों से। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री इस्लामी गणतंत्र ईरान के दौरे पर आए हैं। दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत और समझौते एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर दोनों देशों की प्रगति का इशारा दे रहे हैं। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को विस्तृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। मंगलवार को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधि मंडल के साथ तेहरान पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का यह दूसरा तेहरान दौरा है। इससे पहले वो राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग ले चुके हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले महीनों में तेहरान येरवान के बीच व्यापारिक संबंधों में 43% की वृद्धि हुई है। उनका कहना था कि हमने वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक आदान प्रदान के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान को $3 अरब तक पहुंचाने के मार्ग पर चर्चा की, जो दोनों देशों के अधिकारियों की इच्छा से काफी हद तक संभव है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग पर एक सहमति नोट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों के बीच 2031 तक गैस और बिजली विनिमय का विस्तार करने पर सहमति हुई। भू राजनीतिक और पड़ोसी होने के नाते ईरान और आर्मेनिया ने पिछले एक साल में संबंधों का विस्तार करने और दक्षिणी कॉकेशिया में शांति स्थापित करने की कोशिश करने के उद्देश्य से राजनयिक वार्ता को एजेंडे में रखा है। पिछले सप्ताह ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की येरवान यात्रा और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की हालिया ईरान यात्रा इन राजनयिक प्रयासों और दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास पर बल देने की एक अहम मिसाल है। इन दोनों देशों के बीच लगभग 35 किलोमीटर की एक आम सीमा है, जिसे ईरान और यूरेशिया क्षेत्र और यूरोप के बीच संचार मार्ग माना जा सकता है। परिवहन गलियारों को मजबूत करने का भी एक विशेष स्थान समझा जाता है। ईरान की बंदरगाहें, विशेषकर दक्षिण में स्थित चाबहार बंदरगाह, आर्मेनिया सहित अन्य देशों के साथ व्यापारिक लेन देन के लिए बेहतरीन क्षमता से संपन्न है। ईरान में आर्मेनिया के राजदूत आर्सेन अवाकियान के अनुसार चाबहार बंदरगाह ईरान, आर्मेनिया और भारत के बीच संबंधों को विस्तृत करने का बेहतरीन साधन है। इस्लामी गणतंत्र ईरान और आर्मेनिया ने ईरान आर्मेनिया गैस पाइपलाइन, बिजली आदान प्रदान, वाणिज्यिक सहयोग, कृषि निर्माण और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के माध्यम से आपस में सफल सहयोग किया है। कॉकेशिया के मामलों के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद रजा दमावंदी व्यापारिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों देशों के लक्ष्य निर्धारण का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पाशिनियान की तेहरान यात्रा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा और संवाद से अधिक ठीक है, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की येरवान यात्रा के तुरंत बाद होने वाली यात्रा दोनों देशों द्वारा गंभीर निर्णयों का संकेत दे रही है।
इसराइल में राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है और अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। स्थिति का जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
पिछले चार वर्षों के दौरान इसराइल में पांचवी बार संसदीय चुनाव आयोजित कराए गए। वर्तमान समय में इसराइल में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। सन 1996 से वहां पर लगभग हर ढाई वर्ष के बीच एक बार चुनाव सम्पन्न हुआ है। पिछले चार वर्षों में ये स्थिति अधिक जटिल हुई है। इसका एक कारण वहां पर राजनीतिक पटल पर पाए जाने वाले गंभीर मतभेद है। इसराइल की संसद में 120 सीटें हैं। इस हिसाब से 61 सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन ही सरकार का गठन करने में सक्षम होगा। बताया जाता है कि नेतन्याहू के प्रतिस्पर्धी एकजुट नहीं है। उनके बीच कई प्रकार के वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। यही कारण है कि वे एक वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह पाए और नए चुनाव करवाने पड़े। इन हालिया चुनावों में इसराइल के संचार माध्यम चुनावों को नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के रेफरेंडम के रूप में पेश कर रहे हैं। लिक्विड पार्टी के नेता और इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जीत की संभावना अधिक है, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि नेतन्याहू के समर्थक दलों का 61 के आंकड़ों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। संसदीय चुनावों में नेतन्याहू के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी लैपिड हैं, किंतु बहुमत तक उनकी पहुंच के बारे में अभी कुछ कहना जल्दी होगा। इन चुनावों में एक नया गठबंधन धार्मिक ज़ायोनियों का है। ये वहां के संसदीय चुनाव का तीसरा कोण माने जा रहे हैं। इस गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसराइल की संसद में संभवतः 14 सीटें तक हासिल कर सकता है। धार्मिक ज़ायोनिस्ट गठबंधन नेतन्याहू का समर्थक है। टीकाकार कहते हैं कि नेतन्याहू इस बार अतिवादी दक्षिण पंथियों को लेकर मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में इसराइल के भूतपूर्व विदेश मंत्री ने इसके दुष्परिणामों के प्रति उनको सचेत कर दिया है। विशेष बात यह है कि इसराइल में पिछले चुनावों में नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के प्रयास किए गए थे, जबकि हालिया चुनावों में नेतन्याहू की वापसी की संभावना अधिक पाई जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि इसराइल के हालिया चुनावों में नेतन्याहू जीते या हारे, मुख्य मुद्दा यह है कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में पाई जाने वाली राजनीतिक अस्थिरता फिलहाल इससे समाप्त होने वाली नहीं है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अब एक चुनौती राजस्थान में पार्टी के भीतर पाए जाने वाले संकट का समाधान करना है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान में कांग्रेस के भीतर चले आ रहे विवाद को सुलझाने की बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल लाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि जिन नेताओं के विरुद्ध अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हुआ था उन पर कांग्रेस अध्यक्ष जल्द फैसला करें। ज्ञात रहे कि जिन विधायकों पर अनुशासनहीनता और बगावत का आरोप है वे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जो नहीं हो पाई, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने पार्टी से माफ़ी मांगी थी। राजस्थान पहुंचे पर्यवेक्षकों ने भी इसे गंभीरता से लिया था और AICC ने इसे अनुशासनहीनता का मामला माना था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है जिसमें सबके लिए कानून बराबर है। पायलट ने मानगढ़ धाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा को दिलचस्प बताया और कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी।
गहलोत और पायलट खेमे के बीच चला आ रहा पुराना विवाद उस समय एक बार फिर गहरा गया था जब गहलोत खेमे के लगभग 90 विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के अशोक गहलोत के फैसले की घोषणा के बाद कहा था कि उन लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए जिन्होंने विद्रोह किया था और हम लोगों ने इस विद्रोह को विफल बनाया था। समझा जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए गांधी परिवार की पसंद सचिन पायलट हैं, लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष इस विवाद को सुलझाने में क्या रुख अपनाते हैं। टीकाकारों का मानना है कि चूंकि राजस्थान में अगले ही वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री को बदलना नहीं चाहेंगे बल्कि दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजस्थान के राजनीतिक संकट का नकारात्मक प्रभाव चुनाव के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा पर भी पड़ सकता है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस की विशेष अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम।
प्रिय श्रोतागण, पैगंबर इस्लाम के वंशज हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर विशेष चर्चा के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए, साथ ही हम इस शुभ अवसर की बधाई भी प्रस्तुत करते हैं।
दोस्तों, हिजरी कमरी कैलेंडर के मुताबिक सन 232 के चौथे महीने रबीउस्सानी की 8 तारीख को पैगंबर इस्लाम के खानदान में एक बच्चे के जन्म लेने के साथ ही चारों तरफ अध्यात्म का उजाला फैला और लोगों को पैगंबर इस्लाम के अस्तित्व से निकलने वाली खुशबू की याद आई। ये फूल खिला तो मदीना नगर में पवित्र और विचित्र उल्लास भर गया और परिंदों ने चहचहा कर कसीदे पढ़े। उनका आना और इस संसार से जाना किसी फूल की तरह था। आपका जीवन ज्यादा लंबा नहीं था, मगर आपके बेटे इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो उनके उत्तराधिकारी हैं, अल्लाह की आज्ञा से बहुत लंबी उम्र के मालिक हैं। वो धरती पर अल्लाह की आखिरी हुज्जत हैं।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारी के रूप में पहचानने वाले 12 इमामों में 11वें इमाम हैं। उनके पिता का नाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम था, जो शियों के 10वें इमाम हैं। उनकी माता का नाम सोसन। उनके लकब की बात की जाए तो जकी, फाजिल और रफीक जैसे उनके कई लकब हैं। अस्करी भी उनका लकब है जो बहुत ही मशहूर है, लेकिन ये लकब उनके पिता इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है, इसीलिए कि दोनों को भी सारमरा नगर में नज़रबंद रखा गया जो प्रकार से फौजी इलाका था और अस्करी का अर्थ होता है सामरिक। इमाम हसन अस्करी अली सलाम बचपन से ही अपने पिता के साथ अपने वतन से निर्वासित कर दिए गए और हुकूमत की कड़ी निगरानी में रखे गए। उनकी इतनी कड़ी निगरानी थी कि उन्हें शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इतनी कड़ाई थी कि इमाम हसन अस्करी अली सलाम अपने जीवन में एक भी हज या उमरा नहीं कर सके। इस आयाम से देखा जाए तो वे अपने पूर्वजों से ज्यादा कठिन हालात में रहे।
पैगंबर इस्लाम के वंशज जिन्हें अहले बैत कहा जाता है, उनसे संबंध रखने वाली हर हस्ती का जन्म खास रूहानियत और ज्योति का मालिक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन महान हस्तियों के जीवन से मिलने वाले मूल्यवान पैगाम और पाठ हैं। पैगंबर इस्लाम के अहले बैत अपनी पूरी जिंदगी में नैतिक, धार्मिक और इंसानी उसूलों का व्यवहारिक रूप से प्रचार प्रसार करते रहे और बेहतरीन आदर्श पेश करते रहे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जीवन पर जब हम नज़र डालते हैं और उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें नज़र आती हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने अनुयायियों से कहा था कि बेशक मैं तुम्हारे बीच दो मूल्यवान चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उनसे जुड़े रहे तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह न होगे। एक तो अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलेंगे। तो बहुत ध्यान रखना कि मेरे बाद उनके साथ तुम्हारा क्या कर्तव्य व बर्ताव होता है। मगर खेद की बात है कि पैगंबर इस्लाम के बाद उनकी इस सिफारिश का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि इसकी अवहेलना की गई। पैगंबर इस्लाम के बाद उनके अहले बैत के साथ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर तक दुश्मनी का बर्ताव किया गया।
रवायतों के मुताबिक आखिरी इमाम और मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनके सुपुत्र हैं। इस बारे में इमाम के दुश्मनों को भी पहले से पता था कि उनकी औलाद में से कोई हस्ती इमाम जमाना है जो आकर दुनिया से जुल्म की बिसात समेट देंगे और न्याय की स्थापना करेंगे। यही वजह थी कि जालिम शासक इमाम जमाना को जन्म से पहले ही खत्म कर देने की फिक्र में लग गए। बनी अब्बास शासन की कड़ी निगरानी के बावजूद उन्हें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जन्म लेने की भनक भी नहीं लग सकी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को उनकी माता हजरत नरजिस ने जन्म दिया और इस तरह इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा।
शियों को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत यानि नज़रों से ओझल रहने के लंबे दौर के लिए मानसिक रूप से तैयार करना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का एक लंबा दायित्व था, क्योंकि किसी भी समुदाय और समूह के पेशवा की गैबत और नज़रों से ओझल हो जाना एक अस्वाभाविक और गैर सामान्य घटना है। इस पर यकीन करना और इसकी कठिनाइयों को बर्दाश्त करना लोगों के लिए कठिन होता है। पिछले इमामों में से हर एक ने लोगों को इस विषय के बारे में सूचित किया और मानसिक रूप से उन्हें इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने की कोशिश की। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये प्रयास ज़्यादा स्पष्ट रूप से अंजाम दिया गया, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जन्म के बारे में पैगम्बर और इमामों की बार बार की गई ताकीद मौजूद थी। मगर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने खास शियों को भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम को दिखाया और कहा था कि मेरा बेटा मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी है। दूसरी ओर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से शियों का संपर्क दिन प्रतिदिन सीमित होता जा रहा था, यहाँ तक कि समर्रा नगर के भीतर भी इमाम तक कोई संदेश पहुँचाना हो तो खत के रूप में पहुँचाया जाता था। इसलिए लोगों को इमाम ज़माना की गैबत के दौर के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी था।
گھر میں نظر بند ہونے کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام کا شیعوں سے سمپرک ٹوٹا نہیں۔ وکیلوں کا جو نیٹ ان کے پتا امام علی نقی علیہ السلام نے بنایا تھا اور جس کا لکشیہ یہی تھا، اسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اور بھی وستار دے دیا۔ اسی پروگرام کے تحت اہل بیت سے شردھا رکھنے والی بڑی ہستیوں کو چن کر مہتوپورن شہروں جیسے کوفہ، بغداد، نیشاپور، قوم، خوراسان، مدائن، یمن، رے، آذربائیجان، سارمرا، جورجان اور بسرا میں نیوکت کیا گیا تھا۔ ان کی مدد سے امام کی کوشش ہوتی تھی کہ عام لوگوں تک صحیح جانکاریاں اور شکشائیں پہنچے اور لوگ دھارمک معاملوں میں گمراہ نہ ہو پائیں۔
ایک واقعہ ہوا جس سے لوگوں کا ایمان ڈگمگانے کی آشنکا پیدا ہو گئی۔ یہ سوکھا پڑ جانے کا وشے تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس مشکل کا سمادھان نکالا۔ لمبا سمے ہو گیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ سوکھے سے بہت پریشان تھے۔ حکومت سے جڑے لوگوں نے بارش کے لیے پڑھی جانے والی وشیش نماز نماز استسقا پڑھی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ پھر عیسائیوں کا ایک سموہ اکتریت ہوا اور وہ صحرا کی طرف گئے۔ ان کے بیچ ایک بوڑھا ویکتی تھا جو پادری تھا۔ اس نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بارش ہونے لگی۔ یہ گھٹنا دوسرے دن بھی دہرائی گئی۔ اس پادری نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بارش شروع ہو گئی۔ دو بار بارش ہونے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ بہت سے مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شک ہونے لگا اور کچھ لوگ عیسائیت کی اور جھکنے لگے۔ اس بیچ خلیفہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ کی امت کی مدد کیجیے ورنہ وہ تباہ ہو جائے گی۔
جب عیسائی دعا کے لیے گئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے کچھ شردھالوں کے ساتھ صحرا میں گئے۔ انہوں نے پادری کو دیکھا کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو امام نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ اس ویکتی کی انگلیوں کے بیچ جو چیز ہے اسے لے لو۔ غلام نے اس کی انگلیوں کے بیچ سے ایک ہڈی کا ٹکڑا نکالا۔ امام نے ہڈی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس پادری سے کہا کہ اب دعا کرو۔ اب جب پادری نے دعا کی تو بارش نہیں ہوئی بلکہ آسمان میں موجود بادل بھی چھٹ گئے اور دھوپ نکل آئی۔ خلیفہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ اس ہڈی کا کیا ماجرا ہے تو امام نے جواب دیا کہ یہ ویکتی کسی پیغمبر کی قبر کے قریب سے گزر رہا تھا جس کے پاس اسے ہڈی کا ایک ٹکڑا ملا جسے اس نے اٹھا لیا۔ یہ پیغمبر کی ہڈی کا ٹکڑا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کی ہڈی آسمان کے نیچے ظاہر ہوگی تو بارش ضرور ہوگی۔ اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک بڑے فتنے کو ناکام بنایا اور مسلمانوں کی ایمان کی رکشا کی۔
عباسی خلیفاؤں کو شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اور کربلا آندولن کا سروت ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ عباسی خلیفاؤں نے خود بھی امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے نام پر حکومت حاصل کی تھی، مگر حکومت مل جانے کے بعد دوسرے عباسی خلیفہ منصور نے اور اس کے بعد ہارون رشید اور پھر متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو دھست کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسے حالات میں کہا، اربعین کے موقع پر ایمان حسین علیہ السلام کی زیارت ایمان کی نشانی ہے۔ ان کا کتھن ہے کہ مومن کی پانچ نشانیاں ہیں، 51 رکعت نماز جس میں پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ہی نافلہ نمازیں اور آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی تہجد کی نمازیں شامل ہیں۔ دوسری نشانی اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت۔ تیسری نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ چوتھی نشانی مٹی پر سجدہ کرنا۔ اور پانچویں نشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ سیکھ دی کہ جس طرح نماز شریعت کا استمب ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ولایت کا استمب ہے۔
پری شروتاگن، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہم آپ سب کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کی ایک بار پھر سے بدائی دیتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شوتاو اب پرستت ہے ہماری سبھا کا انتیم کارکرم آج کل.
آج کل دوستوں, آج کل میں آپ کا سواگت ہے. آج ہم ایران کی ورتمان گھٹناؤں میں سنچار مادھیموں کی نکاراتمک بھومیکا پر چرچا کریں گے. اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے. دوستو, یہ بات پوری طرح سے اسپشٹ ہے کہ سنسار میں اپنے ہتوں کو سادھنے کے لیے پشچمی سرکاروں, وشیش کر امریکہ کا مہتوپورن ہتھ کنڈا اس سمے سوشل میڈیا ہو گیا ہے. سوشل میڈیا یا سائبر اسپیس کے مادھیم سے وہ وشو کے دیشوں کی سرکاروں کو گرانے کا بھی کام کرتے ہیں. یہی کارن ہے کہ امریکہ کی ورچسوادی نیتیوں کے کڑے ورودھی ہونے کے کارن اسلامی گڑتنتر ایران پشچمی وشیش کر امریکہ کے سمرتھک سوشل میڈیا کے نشانے پر ہے. سن 1979 میں اسلامی کرانتی کی سفلتا کے آرمبھک ورش سے ہی ایران کے ورودھ دشپرچار آرمبھ ہو گئے تھے. یہ دشپرچار ویسے تو پچھلے کئی دشکوں سے جاری تھے, کنتو پچھلے 15 سے یہ کام بہت تیز ہو گیا تھا. اس سمے فارسی بھاشا کے کم سے کم 360 ٹی وی چینل ایرانیوں کی جیون شیلی کو بدلنے کے ساتھ ہی ان کی آستھا کو بھی بدلنے کے لیے دن پرتی دن کاریہ کر رہے ہیں. یہ سنچار مادھیم پرسپر سہیوگ سے ایران کی استھتی کو بھی اسپشٹ اور آشانت دکھانے کی کوششیں کرتے آ رہے ہیں. اس سمے سنچار مادھیم وبھن شیلیوں سے ایران کے ورودھ دشپرچاروں میں ویست ہیں, جن میں ویڈیو, فلمیں اور چتر آدی شامل ہیں. یہ بات پورے وشواس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جس استر پر ایران کے ورودھ سنچار مادھیموں کے دشپرچار کیے جا رہے ہیں وہ وشو کے کسی بھی ایک دیش کے لیے ابھوتپورو ہے. شاید ہی وشو کا کوئی ایسا دیش ہوگا جس کے ورودھ اتنے بڑے پیمانے پر سنیوجت ڈھنگ سے دشپرچار کیے جا رہے ہیں. پچھلے کچھ ورشوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ایران میں اگر کوئی بھی چھوٹی سی گھٹنا گھٹتی ہے تو فارسی بھاشا والے ایران ورودھی چینل اور سنچار مادھیم اس گھٹنا کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگتے ہیں. حالیہ دنوں میں ایران میں گھٹنے والی گھٹنا بھی کچھ اسی پرکار کی ہے. سولہ ستمبر کو ایران میں مہسا امینی نامک یوتی کی موت ہو گئی تھی. اس کے ندھن پر لوگوں میں دکھ پایا جاتا ہے. اس گھٹنا کے ماتر کچھ ہی گھنٹے بعد ایران ورودھی فارسی بھاشا کے چینلوں نے بنا کسی آدھار کے اس بات کو پرچلت کرنا آرمبھ کر دیا کہ مہسا امینی کی ہتیا سرکشا بلوں کی ہنسک کاروائیوں کے کارن ہوئی. بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اس سماچار پر وشواس کیا وہ کئی شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے. مہسا امینی کی مرتیو کے بعد کی جانے والی سواستھ سمبندھی جانچ سے پتا چلتا ہے کہ اس کو پہلے سے کوئی بیماری تھی اور ان کی مرتیو کسی بھی پرکار کی ہنسا کے کارن نہیں ہوئی. اتنا سب ہو جانے کے باوجود ایران ورودھی سنچار مادھیموں نے واستوکتا کو چھپاتے ہوئے جھوٹ پھیلانے کا کام کیا اور اپدرو کو ہر پرکار سے ٹھنڈا نہ ہونے کے لیے طرح طرح سے ہتھ کنڈے اپنائے. ان ابھوتپورو دشپرچاروں میں سائبر اسپیس میں پریوگ ہونے والے سارے ہی مادھیموں کو پریوگ کر کے ایران اپدرو پھیلانے اور اس کو کھنڈت کرنے کی یوجنا پر کام کیا گیا. یہ سب کام ایک ایرانی یوتی کی موت کو بہانہ بنا کر کیا گیا تھا. اپدرو کے دوران کیے جانے والے دشپرچاروں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بہت ہی سنیوجت ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے.
इस दौरान ब्रिटेन की सरकार से संबंधित बीबीसी फारसी, सऊदी अरब के बजट से चलने वाला ईरान इंटरनेशनल और ब्रिटेन से प्रसारित होने वाले मनुतू टीवी चैनल जैसे कई चैनलों ने ईरानी जनता को उकसाने और उपद्रव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तटस्थ रहने की संचार माध्यमों की जो नीति है उसको इन चैनलों ने एक किनारे रख दिया और अपनी पूरी संभावनाओं और शक्ति के साथ ईरान के विरुद्ध प्रचार व प्रसार करना आरंभ कर दिया। ईरान में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों की झूठी या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण खबरों को प्रसारित करके उन्होंने जहां एक ओर ईरान को अशांत दिखाने के लिए प्रयास किए, वहीं पर अधिक से अधिक लोगों को उपद्रव में भाग लेने के लिए भी उकसाया। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे चित्र और वीडियोज डाले गए जिनमें से अधिकांश या तो बार बार दिखाए जाने वाले थे या फिर उनका संबंध इन विरोध प्रदर्शनों से था ही नहीं। ईरान के शत्रुओं के पैसे से सोशल मीडिया पर चलाया जाने वाला ये मनोवैज्ञानिक युद्ध अब भी जारी है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर निराधार और झूठे समाचारों को इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध प्रसारित किया गया। ईरान में हालिया उपद्रव के बारे में किए जाने वाले ट्वीट, कमेंट्स और सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले अकाउंट्स की जांच करने पर पता चला है कि उनको इसराइल, सऊदी अरब और अल्बानिया में स्थित मुनाफिकीन खल्क के मुख्यालय से संचालित किया जा रहा था। उदाहरण स्वरूप CNN ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि महसा अमीनी के नाम का हैशटैग 52 मिलियन बार ट्वीट किया गया। टीकाकारों के अनुसार इनमें से कुछ ट्वीट की जांच करने से पता चला कि अधिकांश उनमें से फेक थे, जिनमें रोबोट की भूमिका भी सामने आई है। जांच पड़ताल से यह भी पता चला है कि विरोध प्रदर्शनों से संबंधित हैशटैग पर जो लोग ट्वीट करते हैं वैसे अकाउंट्स हैं जो हाल ही में बनाए गए हैं। महसा अमीनी की मृत्यु के बहाने ईरान के विरुद्ध दुष्प्रचारों में ईरान पर महिला के अधिकारों के हनन का भी आरोप लगाया गया। हालांकि ये बात किसी से भी ढकी छिपी नहीं है कि इस्लामिक क्रांति के बाद ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, स्वास्थ्य और मेडिकल साइंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ईरान पर महिला अधिकारों के हनन का आरोप लगाने वाले यही संचार माध्यम पश्चिम, विशेषकर अमेरिका में पुलिस के हाथों मारी जाने वाली महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहते। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में आतंकी कार्रवाई में 25 छात्राओं की हत्या कर दी गई, किंतु पश्चिमी प्रभाव वाले फारसी भाषी संचार माध्यमों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वे पूरी शक्ति के साथ ईरान के विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसे पता चलता है कि संचार माध्यम और उनके स्वामियों के लिए मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का मामला एक हथकंडा है जिसको वे अपने हितों के अनुसार प्रयोग करते रहते हैं। जिस देश के भी विरुद्ध ये दबाव बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ इस हथकंडे का प्रयोग करते हैं। महसा अमीनी की मृत्यु के बाद आरंभ होने वाले उपद्रव के दौरान जब लोगों को ये बात समझ में आने लगी ये तो देश को अशांत बनाने और उसके टुकड़े करने की एक योजना है, तो इन प्रदर्शनों से आम लोगों ने स्वयं को अलग कर लिया। जब इन संचार माध्यमों ने यह देखा तो उन्होंने इस्लामी गणतंत्र ईरान की छवि को बिगाड़ने और लोगों को उपद्रव में शामिल करने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए झूठी खबरें और झूठे वीडियो पेश करने शुरू कर दिए। उनके झूठ को इस बात से समझा जा सकता है कि इस दौरान इन संचार माध्यमों ने कई युवतियों के मारे जाने की खबर फैलाए दी, जबकि पता चलता है कि उनमें से कुछ तो जीवित हैं जबकि कुछ अन्य दूसरे कारकों की वजह से मृत्यु का शिकार हुई, जैसे बीमारी या आत्महत्या। इसके बावजूद आम लोग अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईरान में हाल ही में जो कुछ हुआ उसके पीछे ऐसे लोगों का हाथ था जो पूरी तरह से प्रशिक्षित थे और बहुत हिंसक थे। इन उपद्रवियों ने जानबूझकर निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इन उपद्रवियों के पास हथियार भी थे। उनके हिंसक कामों को मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर लोगों को अधिक से अधिक प्रभावित करने का प्रयास किया। हालिया प्रदर्शनों के दौरान ईरान के सुरक्षा बलों ने बहुत अधिक धैर्य एवं संयम का प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल उसी समय बल का प्रयोग किया जब देखा कि दूसरों की जान के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने देश के सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना करते हुए इस षड्यंत्र को विफल बनाने में देश की जनता की भूमिका की प्रशंसा की। आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामिनाई ने कहा कि विगत की अन्य घटनाओं की भांति इन घटनाओं में भी राष्ट्र सशक्त होकर उभरा और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, और अब समय मुख्य समाचारों की सारांश का। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि 13 आबा दुष्टता और अमेरिका के परास्त होने का उदाहरण है। राष्ट्र संघ ने इसराइली अधिग्रहण के समाप्त किए जाने की मांग की है। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। भारत में हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsiribir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोतो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0098-9035-06-5492। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो